स्वर्ग सुहाना था, सुखों का जिसमें खजाना था, वही देवलोक अपना महान, वो स्वर्णिम युग है सर्व गुणों की खान। स्वर्ग सुहाना था, सुखों का जिसमें खजाना था, वही देवलोक अपना महान, वो स्वर्णिम युग है सर्व गुणों की खान। हर एक मन गाए
राधे कृष्ण संग रास रचाए,
ओ मधुर वाणी हर एक मन गाए
राधे कृष्ण संग रास रचाए,
कण कण
कण कण की पवित्रता मन चाहे,
सतयुगी गुलशन महकाए। सुहाना था, सुखों का जिसमें खजाना था, वही देवलोक अपना महान, वो स्वर्णिम युग है सर्व गुणों की खान। नारायण का थारा
हर एक सर पे थे दो चार,
लक्ष्मी नारायण का थारा
दूध घी की
नदियाँ बहती थी, सुखदाई प्रकृति वहाँ रहती थी।
हमारा स्वर्ग सुहाना था, सुखों का जिसमें खजाना था,
हमारा स्वर्ग सुहाना था, सुखों का जिसमें खजाना था,
वही देवलोक अपना महान, वो स्वर्णिम युग है सर्व गुणों की खान।
Bye. ओम शांति। कल यहां पर दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का समापन होने वाला है, ये फिनिशिंग पॉइंट है। तो यहां पर बाहर काफी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन वहां पर कुछ भाई बहनों ने अपनी गाड़ियां पार्क की हुई है, अभी भी उसके कारण काफी तकलीफ हो रही है। अभी भी अगर किसी को है कि भाई अपनी गाड़ी वहां पर खड़ी है इंद्रप्रस्थ के पीछे या फिर आगे सुदर्शन भवन की तरफ भी, क्योंकि काफी दूर तक तैयारियां हैं, अभी तुरंत ही जाएं और अपनी गाड़ी वहां से हटाएं, नहीं तो फिर परसों तक नहीं हटा पाएंगे वहां से, इस तरह से वो जाम भी हो सकती है। इसलिए अभी तुरंत जाए और अपनी गाड़ी वहां पर से हटा दे।
ओम शांति। आज हम बाबा की 16 अगस्त की साकार मुरली सुनेंगे। आज जन्माष्टमी है, सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा ने भी हमें जन्माष्टमी की बहुत मुबारक दी है। बाबा कहते बच्चों को तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको ऐसी रंग बिरंगी दुनिया स्वर्ग में ले जाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी से ये पढ़ाई पढ़नी चाहिए। बाबा हमको ऐसी दुनिया का मालिक बना रहे हैं। बाबा ने कहा ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, रंग बिरंगी दुनिया। आज का मुरली का गीत ही है रंग बिरंगी दुनिया बाबा। तो बाबा ने कहा इस रंग बिरंगी दुनिया में बच्चों के बहुत सुंदर महल होंगे, ये बहुत खूबसूरत दुनिया होगी। ऐसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड के मालिक बनने के बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। लेकिन जब हम विस्मृति में आ जाते हैं तो बाबा कहते खुशी गायब हो जाती है, मुरझा जाते हैं। आज बाबा ने हमें सेवा के लिए भी बहुत सुंदर युक्तियां बताई है, गाइडेंस दिया है कि कैसे हमें भाषण करना है, कैसे बाबा ने कहा पॉइंट्स लिखने हैं सुबह सवेरे और उसमें ऐड करना है, जो बातें भूल जाते हैं उसको ऐड करना है। बाबा ने कहा जन्माष्टमी में सभी नए कपड़े पहनते हैं, तो उनको ये रहस्य बताओ कि कैसे बाप आकर बच्चों की कंचन काया बना देते हैं, आत्मा को भी पवित्र बनाते हैं तो शरीर भी बच्चों को पवित्र कंचन अर्थात सोने का शरीर अर्थात कर्म इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इस जन्माष्टमी के कई रहस्य हैं जो बच्चों को औरों को समझाना है। जैसे कृष्ण को भी काला दिखाते हैं, नारायण को काला दिखाते हैं, बाबा कहते शिवलिंग को भी काला दिखाया है, श्रीनाथ द्वारे में भी मूर्ति काली है, तो इसका क्या रहस्य है, ये बच्चों को औरों को समझाना है। बाबा ने आज हमारी चेकिंग भी की कि कैसे हमारे मनसा वाचा कर्मणा दैवी चलन है। बाबा ने हमें प्रेरणा भी दी कि बच्चों को स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया स्वर्ग का मालिक बनना, तो सदा इस खुशी में हर्षित रहो। बाबा हमें सदा ऐसी खुशी में हर्षित मुख देखना चाहते हैं। कृष्ण का भी स्वरूप हमेशा हर्षित है, देवी देवताओं का स्वरूप हर्षित है, मुरझाया हुआ नहीं। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? बाबा रोज हमें मुरली द्वारा उमंग उत्साह दिलाते हैं, तो बाबा ने कहा ये उमंग उत्साह बना रहेगा, ऐसे तकदीरवान बच्चों को की निशानी कौन सी? बाबा कहते उन्हें ये स्मृति होगी तकदीरवान बच्चों को कि हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो। बाबा कहते ऐसे ही उमंग से तुम्हें सबको समझाना है कि ये लड़ाई नहीं स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद क्या होगा? इस लड़ाई के बाद क्या होगा? स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, तो इसी खुशी में रहना है क्योंकि विनाश की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। तो बाबा कहते हैं कि इस लड़ाई में ही हमारा स्वर्ग समाया हुआ है, इस लड़ाई के बाद ही खुशी के द्वार, स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, तो ये खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी ये समझाना है कि इस विनाश में ही नई दुनिया की स्थापना समाई हुई है। मुरली का गीत है, दुनिया रंग रंगीली बाबा, ओम शांति। ये किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है? अब इनका अर्थ दूसरा कोई समझ न सके। बाबा ने समझाया कि ये खेल रंग रंगीला है। कोई भी बाइस्कोप आदि होता है तो उसमें बहुत रंग बिरंगी सीन सीनरी आदि होती है। अब ये बेहद की दुनिया को तो कोई भी जानते ही नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। नॉलेज तो बाबा ने दे दी है, लेकिन ये नॉलेज स्मृति में रहे, उसमें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहते ये सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम समझते हो कि स्वर्ग हमारा कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते ही नहीं है, कोई के बुद्धि में ही नहीं है कि वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया है स्वर्ग का यादगार। गाया भी जाता है स्वर्ग को क्या टाइटल बाबा देते हैं? बाबा कहते ये है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको सिर्फ तुम ही जानते हो, वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो दुनिया वाले जानते हैं, ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो परमात्मा स्थापन करते इसको तुम ही सिर्फ जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर के अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो है ना, यह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बड़ी रंग बिरंगी दुनिया, और उसका मालिक बनने के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। जहां क्या होगा इस रंग बिरंगी दुनिया में, इसकी सुंदरता, इसकी खूबसूरती बाबा आज वर्णन कर रहे हैं, जहां हीरे जवाहरात के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में इस वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो, चले गए ना हम सब बुद्धि से, एक सेकंड में इस वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो। फिर वहां क्या करते हो? हमारी संदेशी तो हमें वर्णन करके सुनाते हैं वहां का, लेकिन हम बच्चे भी जब बुद्धि बल से जाते हैं तो क्या करते हैं स्वर्ग में? बाबा ने तो कई बार हमें वो सीन सीनरी सुनाई है, खेलते हो, रास विलास करते हो, बरोबर ये है ही वंडरफुल दुनिया। यहां है माया का राज्य, यह भी कितना वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में, कोई भी नहीं समझते कि हम नाटक में खेल कर रहे हैं। कोई भी अपने को एक्टर तो समझते नहीं है कि हम ये नाटक में खेल कर रहे हैं। नाटक अगर समझें तो क्या हो, अगर समझे कि हम नाटक में अपना पार्ट बजा रहे हैं तो क्या करें, नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। तुम बच्चे जानते हो बाबा भी कितना साधारण है, बाबा कितना साधारण रूप में बैठकर हमको कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है। बाबा कहते माया क्या करती है, माया बिल्कुल ही भुला देती है। बाबा साधारण स्वरूप है तो माया भुला देती है कि कितनी ऊंची पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं, हमें ऐसे सुंदर दुनिया का मालिक बना रहे हैं। माया क्या करती है फिर, नाक से पकड़ा और ये भुलाया। हम सबको अनुभव है ना माया कैसे विस्मृति में हमें ले जाती है। अभी अभी याद में है तो बहुत हर्षित है, याद में है तो निशानी क्या है, बहुत हर्षित है। और फिर ऐसा मुरझा जाते, जो बाबा ने उदाहरण क्या दिया होगा, ऐसा मुरझा जाते जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ न हो, जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं है कि हम तो स्वर्ग में जाने वाले हैं, हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। जैसे एकदम ही मुर्दे बन जाते हैं जब ये भूल जाते हैं, तो बाबा कहते जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं, वो खुशी वो नशा नहीं रहता, जो बाबा हमको खुशी दिला रहा है नशा चढ़ा रहा है वो भूल जाते हैं। अभी वंडर ऑफ द वर्ल्ड की स्थापना हो रही है, हम देख रहे हैं कैसे बाबा इस वंडर ऑफ द वर्ल्ड की स्थापना कर रहे हैं और हम सब भी बाबा के साथ मददगार हैं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड का श्री कृष्ण है फर्स्ट प्रिंस, तो ये नई दुनिया का फर्स्ट प्रिंस है, ये तुम जानते हो। तो कृष्ण जन्माष्टमी का रहस्य तो हम बच्चों को बाबा ने समझाया है कि वो है नई दुनिया का फर्स्ट प्रिंस। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जो ज्ञान में होशियार हैं वह समझाते होंगे, श्री कृष्ण वंडर ऑफ द वर्ल्ड का प्रिंस था, वह सत्युग फिर कहां गया। बाबा पूछते हैं कि ऐसी सुंदर रंग बिरंगी दुनिया कहां चली गई, सत्युग से लेकर सीढ़ी नीचे कैसे उतरे, ये भी बाबा हमको रहस्य बता रहे हैं। सत्युग से कलयुग कैसे हुआ, कैसे हुआ बाबा हमको समझा रहे हैं कि उतरती कला कैसे हुई, कैसे हुई तुम बच्चों की बुद्धि में ही अब आएगा, क्योंकि बाबा ने हमको रहस्य बताया है, उस खुशी से समझाना चाहिए। श्री कृष्ण, हमारा स्लोगन क्या है, श्री कृष्ण आ रहे हैं। बाबा कहते ये बहुत खुशी से समझाना है कि वो नई दुनिया आ रही है, श्री कृष्ण भी आ रहे हैं, वो फर्स्ट प्रिंस होंगे उस नई दुनिया की, रंग बिरंगी दुनिया के। श्री कृष्ण का राज्य फिर से स्थापन हो रहा है, ये सुनकर भारतवासियों को कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु वो उमंग उनको आएगा, चाहे समझाने का उमंग चाहे समझने का उमंग, किसको आएगा, किसको आएगा, जो तकदीरवान होंगे, जो इस नई दुनिया में जाने वाले होंगे, उनको वो खुशी होगी, उनको वो उमंग आएगा। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी क्या करते हैं, हम उनको ज्ञान रत्न देते हैं, संदेश देते हैं, हर एक बाबा का बच्चा किसी न किसी विधि से संदेश देता है। तो बाबा कहते मनुष्य तो रत्नों को भी क्या समझते, पत्थर समझकर फेंक देते हैं। अब ये तो है अविनाशी ज्ञान रत्न, तो इन ज्ञान रत्नों का सागर बाप है, इन रत्नों की बहुत वैल्यू है, हम हर एक बच्चे को इन रत्नों की वैल्यू है, हम इन ज्ञान रत्नों को मनन चिंतन कर अपने अंदर धारण कर रहे हैं, ऐसा श्रेष्ठ बाबा हमें बना रहा है, तो इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। यह ज्ञान रत्न की वैल्यू कब होती है, इसकी वैल्यू को हम कैसे अनुभव करते हैं, ये ज्ञान रत्न धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो, फिर और कुछ भी सुनने की दरकार नहीं है। बाबा ने ये स्पष्ट बात कर ली कि ज्ञान सागर से हम बच्चे डायरेक्ट सुन रहे हैं, अब और कुछ भी सुनने की दरकार नहीं है। सत्युग में ये होते नहीं, न यह कोई वहां की LLB या यहाँ की जो सर्जन आदि की पढ़ाई है, बाबा कहते सत्युग में होती नहीं है, क्योंकि वहां न LLB न सर्जन आदि बनना होता है, वहां तो ये नॉलेज की दरकार है ही नहीं, वहां ये नॉलेज ही नहीं है, वहां तो प्रलब्ध भोगते हो। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति औरों को समझाना है। अनेक बार ये मुरली भी चली हुई है, जन्माष्टमी पर मुरली तो अनेक बार चली है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तभी पॉइंट्स निकलेंगी। भाषण करना है तो बाबा ने आज हमें युक्तियां दी है, बहुत सुंदर बाबा ने गाइडेंस दिया है। तो भाषण करना है तो क्या करना है, सवेरे उठकर लिखना चाहिए। बाबा कहते पहले से सारी पॉइंट्स लिखनी चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। भूली हुई पॉइंट्स फिर क्या करना चाहिए, फिर पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि कुछ पॉइंट्स तो भूल गए हैं, फिर भूली हुई पॉइंट्स ऐड करनी चाहिए। इससे धारणा अच्छी होगी। फिर भी लिखत माफिक तो सभी नहीं बोल सकेंगे, बाबा प्रैक्टिकल में देखते हैं तो फिर लिखत माफिक तो हम सब बोलते नहीं हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो भूल जाएंगे। तो समझाना होता है कि श्री कृष्ण कौन है, ये तो है ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड का मालिक, उस रंग बिरंगी दुनिया का मालिक। भारत ही पैराडाइज था, तो पैराडाइज का मालिक कौन था, श्री कृष्ण। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने ही सिखाया है, अब भी सिखला रहे हैं, पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं, डबल सिरताज देवता बनाने के लिए। बाबा हमारे अंदर पवित्रता की धारणा का पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम संपूर्ण पवित्र बन जाएं, क्योंकि डबल सिरताज देवता बनाने के लिए। तो यह सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए, जिनकी प्रैक्टिस होगी वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, बाबा ने तो सारे चित्र कितना प्यार से बनवाए, हमारे विश्व रतन दादाजी ने भी और दादियों ने बहुत प्यार से चित्र बनाए और सब लिखत हर चीज बाबा से वेरीफाई करके उसमें लिखी है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे कि स्वर्ग समाया हुआ है, बाबा कहते ये भल विनाश की सीनरी दिखाई देती है, लेकिन इस लड़ाई में ही जैसे कि स्वर्ग समाया हुआ है। तो बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर लौकिक दुनिया में मनुष्य क्या करते हैं, बाबा कहते मनुष्य कपड़े आदि सब नए पहनते हैं, खरीदते हैं और नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो इसका रहस्य। क्या रहस्य है इसका, कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़कर नया कंचन शरीर लेंगे। कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। अभी कंचन नहीं है, नंबर वार बन रही है, हम सबकी काया नंबरवार कंचन बन रही है। कंचन बनेगी कैसे, किसके आधार से, कर्मेंद्रियां शीतल कंचन किस आधार से बनेंगी, याद की यात्रा से। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको याद करने की भी अकल नहीं है, याद की जब मेहनत करेंगे तब क्या होगा, याद की जब मेहनत करेंगे तब क्या होगा, बाबा कहते तब फिर वाणी जौहरदार होगी। बाबा ने हमें सेवा की कई युक्तियां बताई, लेकिन उसके लिए आधार है याद की मेहनत। याद की मेहनत करेंगे तब वाणी जौहरदार होगी। अभी वो ताकत कहाँ है, बाबा हमें देख रहा है और बाबा हमें अटेंशन दिला रहा है कि अभी वो ताकत कहाँ है, योग है नहीं। बाबा जैसे चाहते हैं ऐसे हम बच्चों की याद की यात्रा है नहीं। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी तो चाहिए ना, बाबा कौन सी शक्ल देख रहा है, मन बुद्धि की शक्ल देख रहा है। पढ़ाई भी चाहिए ना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। बाबा हमें स्वपुरुषार्थ का भी अटेंशन दिला रहा है और सेवा की भी युक्तियां बता रहा है। श्री कृष्ण के लिए क्या कहा जाता है भक्ति मार्ग में, जिसके आधार से हम औरों को समझा सकते हैं, क्या कहा जाता है? श्याम सुंदर। श्री कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बना दिया है। बाप खुद कहते हैं, मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठकर स्वर्ग के मालिक बने वो कहां चले गए? काम चिता पर बैठ नंबर वार गिरते चले आए हैं। सृष्टि भी सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है, तो मनुष्यों की अवस्था भी ऐसे होती है। काम चिता पर बैठ सब श्याम अर्थात काले बन गए हैं। अभी मैं आया हूं फिर से सुंदर बनाने। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है, तो बाबा हमारी आत्मा को सुंदर बना रहा है। बाबा हरेक की चलन से समझ जाते हैं। बाबा हम हरेक बच्चे को देख रहा है, हम भी अपनी चेकिंग करते हैं, तो बाबा देख रहा है और बाबा कहता मैं तो समझ जाता हूं। बाबा क्या देखता है? मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं, उससे पता पड़ जाता है। हमारे कर्मों से बाबा को पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन भी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। बाबा ने हमें कितनी सुंदर पॉइंट्स दे दी है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी में बच्चों को समझाना बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर का भी टॉपिक है। श्री कृष्ण को भी काला, फिर नारायण को भी काला, फिर राधे को काला क्यों नहीं बनाते हैं? फिर बाबा कहते शिवलिंग भी काला पत्थर रखते हैं। बाबा का भी शिवलिंग जो है काला पत्थर रखते हैं। अब वह कोई काला थोड़ी है, शिव है क्या और चीज क्या बनाते हैं? इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, काला क्यों बनाते हैं तुम इस पर समझा सकेंगे। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाबा ने हमें युक्तियां दे दी है, अब बाबा देखेगा कि हम बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाप तो कहते हैं कि ज्ञान सर्व धर्मों के लिए है। उनको भी कहना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। पवित्र बनना है किसको भी तुम, पवित्रता के निमित्त कौन सा त्योहार हमने मनाया? बाबा कहते किसको भी तुम राखी बांध सकते हो। आज बाबा ने हमें ये रहस्य बताया कि किसको भी तुम राखी बांध सकते हो, क्योंकि ये परमात्मा के तरफ से पवित्रता का बंधन है। यूरोपियन को भी बांध सकते हो, बाबा के बच्चे तो देश विदेश में सेवाएं करते हैं। कोई भी हो उनको कहना है कि भगवान उवाच, जरूर कोई तन से ही कहेंगे ना। कहते हैं मां मेकम याद करो, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना समझाते हैं फिर भी नहीं समझते हैं, तो फिर बाबा समझ जाते हैं। बाबा क्या समझ जाते हैं? कि इनकी तकदीर में नहीं है, तो बाबा हमें सावधान कर रहे हैं। यह भी समझते होंगे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, अब रथ बगैर तो पढ़ा न सके, इशारा देना है बस। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए तो समझते हो कि ये तो ऊंच पद पाने वाले हैं, इनका भविष्य तो स्पष्ट है श्री कृष्ण राधे के रूप में। मम्मा भी सर्विस करती थी ना, इन बातों को समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बाबा हमें सावधान करते हैं कि माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। कौन सा रूप आज बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया है? बहुत कहते हैं कि हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकरर तन द्वारा ही सुनाएंगे। बाबा ने जो तन मुकरर किया है बाबा ज्ञान उनके द्वारा ही सुनाएंगे, दूसरे किसी के द्वारा क्यों सुनाएंगे, यह हो ही नहीं सकता। बाबा ये क्लियर कर रहा है, सिर्फ मुकरर तन के द्वारा ही बाप सुनाते हैं और किसी के द्वारा हो ही नहीं सकता। ऐसे तो बच्चियां बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपनी भी सुनाती हैं, मैगजीन आदि में कितनी बातें आती है, बच्चे भी मनन चिंतन करके बहुत पॉइंट सुनाते हैं, मैगजीन में भी आते रहते हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते हैं वह लिखवाते हैं, नहीं, बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं, मधुबन में मुकरर तन में बाबा डायरेक्ट आते हैं, तब तो यहाँ सुनने के लिए सब आते हैं ना। अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं फिर वहां ही बैठ उनसे पढ़े, लेकिन बाबा की पढ़ाई तो मधुबन से ही मुकरर तन के द्वारा हम पढ़ते हैं। तो बाबा ये सावधान हमें कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ आने की सबको कशिश होती है ना, क्योंकि यहाँ बाबा का रथ है, यहाँ बाबा की पढ़ाई है। दूर रहने वालों को भी और जास्ती कशिश होती है, विदेश में तो कितना दूर रहते हैं और कितनी कशिश होती है, भारत में भी कई स्थान है जिसके जो यहाँ मधुबन पहुँचने के लिए 3-3 दिन लगते हैं, उनको बाबा कितनी कशिश होती है बाबा की और मधुबन की। दूर रहने वालों को और जास्ती कशिश होती है, तो बच्चे जन्माष्टमी पर बहुत सर्विस कर सकते हो। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ यह किसको पता ही नहीं है, तुम्हारी अब झोली भर रही है। बाबा हमारी झोली को ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं, बाबा क्या देख रहे हैं, कि कोई कोई में बिल्कुल ही खुशी नहीं है। श्री मत पर न चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं, सर्विसेबल बच्चों को जैसे सर्विस ही सर्विस सूझती रहेगी। समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसको रास्ता नहीं बताया, गोया हम अंधे ही रहे, यह समझने की बात है। बैच में भी श्री कृष्ण का चित्र है, हम सबके पास बैज है, उसमें भी श्री कृष्ण का चित्र है। बाबा कहते उस पर भी समझा सकते हो, कोई से भी पूछो, क्या पूछना है प्रश्न, कैसे जन्माष्टमी पर हमें समझाना है, कोई से भी पूछो कि कृष्ण को काला क्यों दिखाया है, बता ही नहीं सकेंगे। शास्त्र में लिख दिया है राम की स्त्री चुराई गई, परंतु ऐसी कोई बात तो होती नहीं। तुम भारतवासी ही परिस्थानी थे, अभी कब्रिस्तानी बने हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठकर दैवी गुण धारण कर फिर से तुम परिस्थानी बनते हो। सर्विस तो बच्चों को जरूर करनी है, बाबा ने आज हमें सर्विस की कितनी युक्तियां बताई है, उमंग दिलाया है, तो बाबा कहते सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है, इसमें बड़ी समझ चाहिए, इतना नशा चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो ऐसा नशे से उमंग से हमें सर्विस करनी है। भगवान के साथ हम रहते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान के साथ हम रहते हैं, भगवान के बच्चे भी हैं फिर हम पढ़ते भी हैं उनसे। बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा, यहाँ हमारी बोर्डिंग है ना मधुबन में, यहाँ तो स्कूल है ना, क्रिश्चियन में भी फिर मैनर्स होते हैं। अभी तो बिल्कुल बाबा देख रहे हैं सारी दुनिया में, अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स, तमो प्रधान पतित है, देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कितनी उनकी महिमा करते हैं। सत्युग में सबके दैवी कैरेक्टर थे, अभी तो आसुरी कैरेक्टर है। ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे, मुख छोटा बात बड़ी। यह फिर किसके लिए गायन है, श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो, बाप से कितनी बड़ी बातें सुनते हो, क्यों सुनते हो, हम बाबा से इतनी बड़ी बातें क्यों सुन रहे हैं, बाबा हमको कितना बड़ा बना रहे हैं। बाबा कहते हैं ये सारी ऊंचे ते ऊंची श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बातें बाबा सुना रहे हैं इतना बड़ा बनाने के लिए, ऊंच और श्रेष्ठ बनाने के लिए। तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो, यह बाप का पैगाम सबको देना है। ये लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है। अभी पतित से पावन बनना है, बाप को याद करना है, देहधारी को याद नहीं करना है। बाबा हमें अटेंशन दिला रहे हैं, एक ही बाप सर्व का सदगति दाता है, सर्व की सदगति करते हैं। यह है ही आयरन एजेड वर्ल्ड। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो यहां भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है। देवी देवता बनना, लक्ष्मी नारायण के साथ संपन्न बनना, तो बाबा कहते हैं कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है। तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, सर्विस भी बहुत है। माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं। चित्र भी बाबा कहते ये चित्र भी अब सब उठाओ, श्री कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का काला चित्र उठाओ, शिव का भी काला, तो फिर बैठकर उनको समझाओ कि काले का रहस्य क्या है, क्यों ये चित्र सारे काले बनाए हैं, देवताओं को काला क्यों कर दिया है, श्याम सुंदर का रहस्य बताओ। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहां भी बिल्कुल काला चित्र है। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए, उनका चित्र भी दिखाना चाहिए कि काला दिखाया है उसमें भक्ति मार्ग के चित्र में, फिर अपने भी चित्र दिखाने चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझाकर कहो, तुम अब राखी बांध काम चित्ता से उतर ज्ञान चित्ता पर बैठेंगे तो फिर गोरा बन जाएंगे। यहां भी तुम सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि इनको काला क्यों बना दिया है। बाबा कहते हैं इसमें भाषण बहुत अच्छा कर सकते हो। बाबा ने तो हमें कितनी सारी पॉइंट्स दी, बाबा ने कहा इसे सब पॉइंट्स को लिख कर फिर भाषण कर सकते हैं। शिव लिंग को भी काला क्यों किया है वो भी रहस्य बताना है। श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं हम समझाएंगे। इसमें कोई नाराज नहीं होगा, सर्विस तो बहुत सहज है। बाबा कितनी युक्तियां दे रहा है, इसलिए बाबा कह रहा है कि सर्विस तो बहुत सहज है। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। फिर राखी बंधन का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो। बाबा ने कहा कोई को भी राखी बांध सकते हो और ये राखी बंधन का अर्थ समझा सकते हो। बाबा ने किसको याद किया होगा सर्विस के लिए रक्षाबंधन पर, वैश्याओं को भी समझा कर राखी बांध सकते हो। चित्र भी साथ में हो, बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो, ये फरमान मानने से तुम गोरा बन जाएंगे। उनको बताना है कि कैसे काले बन गए हैं, उसका रहस्य क्या है, और फिर बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो तो ये फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। बहुत युक्तियां हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा। बाबा जैसे हमें समझा रहे हैं ऐसे प्यार से हम समझाएंगे तो कोई भी बाबा कहते नाराज नहीं होगा। कोई भी मनुष्य मात्र किसकी भी सदगति नहीं कर सकते हैं सिवाय एक बाप के। भल राखी बंधन का दिन न भी हो, कभी भी राखी बांध सकते हो। बाबा कहते यह फिर उसका अर्थ समझाना है। बाबा कहते कि राखी जब चाहो तब बांधी जा सकती है, तुम्हारा धंधा ही यह है राखी बांधना, सबको पवित्रता की प्रतिज्ञा कराना, सबको बाबा का पवित्रता का वरदान देना, तुम्हारा धंधा ही यह है। बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी जाकर तुम उनको समझा सकते हो कि हम राखी बांधने के लिए आए हैं, यह बात तुमको भी समझने का हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। बाबा को हम याद करेंगे तो बाबा कहते इस याद के बल से पाप कट जाएंगे, तुम पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। जो आज बाबा ने कहा है रंग बिरंगी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है, गोल्डन एज थी जरूर, आज तो हम विशेष गोल्डन एज को याद कर रहे हैं और उसका स्वरूप भी देख रहे हैं। गोल्डन एज तो थी जरूर, अभी है आयरन एज। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है, ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों में पड़ेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार क्या सुनाया है? बाबा की पहली पॉइंट है ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं इनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रतन धारण करने हैं। मुख से सदैव रतन निकालने हैं। दूसरी पॉइंट है याद की यात्रा में रहकर वाणी को क्या बनाना है? जौहरदार बनाना है। याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने की अकल सीखना है। बाबा से हमें ये याद करने की अकल सीखना है। आज का बाबा का वरदान है मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले, मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिकर बादशाह भव। मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिकर बादशाह भव। आज की दुनिया में धन भी है और क्या है? धन के साथ क्या आ जाता है? भय भी है। बाबा ने समझाया है कि धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना ही भय से ही खाते हैं, भय में ही सोते हैं। जहां मेरापन है वहां भय जरूर होगा। बाबा हमें अंडरलाइन करा रहे हैं कि जहां मेरापन है वहां भय जरूर होगा, उसको खोने का भय जरूर होगा। कोई सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भय है, लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप में भी मेरे मेरे को चेक करके उसका त्याग करो। बाबा हमें अटेंशन दिला रहे हैं कि सूक्ष्म रूप में मेरे मेरे को चेक करो तो और उसका त्याग करो तो निर्भय बेफिकर बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। बाबा का स्लोगन है, दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो क्या होगा। बाबा हमें सिखाते हैं, हमने दादियों को देखा है, बड़ी दीदियों को, सबको देखा है, कैसे हर एक दादी जी दूसरे दादी जी के विचारों को कितना रिगार्ड देते थे। तो दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त होगा। बाबा का व्यक्त इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाबा का ये थीम चल रहा है, एक तरफ बेहद का वैराग्य हो और दूसरे तरफ बाप के समान, ब्रह्मा बाप के समान, बाप के लव में लवलीन हो जाओ। एक सेकंड और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। ऐसे लवलीन बच्चों को बाबा, ऐसे लवलीन बच्चों का जो संगठन है, बाबा देख रहा है कि ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो। आप निमित्त आत्माएं, बाबा ने हम सब बच्चों को एक एक को निमित्त बनाया है विश्व सेवा के लिए, इस परिवार की सेवा के लिए। आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी की श्रेष्ठ पालना करो, योग्य बनाओ अर्थात योगी बनाओ। योग्य बनाना अर्थात योगी बनाना। दादी जी की विशेषताएं जो रोज हम सुन रहे हैं, बिंदु बन, बिंदु बाबा के याद की मस्ती में सदा मगन। दादी जी सदा बाबा के याद की मस्ती में खोई हुई रहती थी। हमें भी सबको अनुभव है, बुद्धि से हम देख रहे हैं दादी का वो बाबा की याद में खोया हुआ स्वरूप। और हम सबको यही शिक्षा देती है कि अमृत वेले अंडरग्राउंड होकर बाबा के पास बैठ जाओ। मैं लाइट बिंदु हूं और मेरा बाबा भी बिंदु है। इसी याद की मस्ती में मैं तो मगन रहती हूं। दादी अपना अनुभव सुना रही हैं कि मैं लाइट बिंदु हूं और मेरा बाबा भी बिंदु है। इसी याद की मस्ती में तो मैं मगन रहती हूं। रोज अमृत वेले बाबा से दुआओं की झोली भर लेती हूं। आप सभी भी अमृत वेले बाबा की गोदी में छिप जाओ, उसमें समा जाओ, लीन हो जाओ। आप सभी भी अमृत वेले बाबा की गोदी में समा जाओ, छिप जाओ, लीन हो जाओ, तो सारा दिन अच्छा हो जाएगा, दिल मजबूत हो जाएगी। सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की ताकत ही नहीं जो हमारा सामना भी कर सके। दादी ने कहा कि सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे हम रहेंगे तो माया की ताकत ही नहीं जो हमारा सामना कर सके। हम सबके पास दादियों की बहुत ऐसे विशेष स्मृतियां हैं। एक छोटी सी स्मृति है कि दादी जी जब हम यहाँ समर्पित जीवन के पहले आए हुए थे तो यहाँ ही सेवाओं में समझाने की सेवा जो है कर रहे थे, जो हमारे विजिटर्स को समझाते हैं। तो एक बार समझा रहे थे, सलवार कमीज में थे, घर से आए हुए थे, तो दादी पीछे खड़ी थी। ऐसा आभास हुआ कि दादी पीछे खड़ी हैं और इतनी पावर, इतनी लाइट माइट दादी से मिल रही थी, तो उस समय जैसे लगा मैं हूं ही नहीं इस शरीर में, और बाबा और दादियों की लाइट हमें शक्ति दे रही है। हम सब कितने लकी हैं कि हमें दादी जी की और सभी दादियों की पालना मिली हुई है। आज जन्माष्टमी है, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, दीदी आएंगे।
ओम शांति। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी भोग लगेगा, उसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस है। जैसे कि आप सभी को पता है, कल दादी प्रकाशमणि हाफ मैराथन है और उसमें 3000 से ज्यादा एंट्रीज आ चुकी है, और विशेष खुशी की बात हमारे लिए यह है कि 60 से भी ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके कारण बहुत भव्य आयोजन है। आप सभी का सहयोग उसमें अपेक्षित है। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे वहां से 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगी रेस, तो 5:30 बजे से माउंट आबू से आबू रोड जाने वाला रास्ता ट्रैफिक के लिए पूर्णतः बंद रहेगा। तो आप सभी से भी निवेदन है कि जो भी कल सवेरे जाना चाहते हैं या जिनकी ट्रेन्स भी है या कुछ भी शांतिवन का कारोबार होगा, तो आज ही वो शांतिवन चले जाए तो बेटर रहेगा, नहीं तो फिर 10 बजे के बाद। लेकिन 10 बजे के बाद भी ट्रैफिक ज्यादा होगा क्योंकि जन्माष्टमी के दिन है, तो आपको दिक्कत हो सकती है जाने की। दूसरी बात यह है कि सवेरे 5:30 बजे से 10 बजे तक हमारे मधुबन के या सेवादारी भाई बहने भी कोई कोई स्कूटर्स लेके, मोटरसाइकिल लेके, अपनी अपनी गाड़ियां लेके निकलते हैं रेस देखने के लिए। तो वहां पुलिस रहेंगे, पुलिस प्रशासन वाले और दूसरे पर्सनल गार्ड्स भी रहेंगे, तो उनको आप सहयोग अवश्य करेंगे और कोई भी उस ट्रैक पे नहीं जाएंगे 10 बजे से पहले। दूसरा डायरेक्शन यह है कि जैसे आपको पता है फिनिशिंग पॉइंट पे यहां ओम शांति ओम के सामने बहुत ज्यादा लोग एकत्रित होंगे, तो इसलिए वहां से सारी गाड़ियां आज भी हटा दिए गए, कल भी वैसे ही वहां नहीं लग पाएगी। और आप लोग भी जो देखने वाले हैं, रेस देखने वाले, वो दूर से खड़े रहकर, जहां रेलिंग लगी है रेलिंग के बाहर खड़े रहकर उनको चीयर करेंगे। कल मुरली क्लास भी थोड़ा जल्दी होगा, तो आप लोग उसके बाद मुरली क्लास के बाद चीयर करने वाले खड़े हो सकते हो। 3.5 घंटे का कट ऑफ टाइम है, 3.5 घंटे तक सारे रनर्स आते रहेंगे, तो आप सबसे निवेदन है कि आप भी बारी बारी से वहां खड़े रहकर चीयर अप करें, सबको उत्साहित करें। और आप में से जो भी सेवा देना चाहते हैं, तो हमारे सुखधाम में इनका सबका नाश्ते की व्यवस्था की है, तो जो भी फ्री हो या सेवा देना चाहते हैं सुखधाम में सवेरे 7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक भी नाश्ता चलता है, तो आप उसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। और जो आने वाले भाई बहन हैं उनको बाबा के घर की पालना भी दे सकते हैं। पुनः आप सबसे निवेदन है कि केवल जो वॉलंटियर्स है, जिनको वॉलंटियर्स के बैच मिले हैं, वही जो फिनिशिंग पॉइंट एरिया है रेस एरिया में रहेंगे, बाकी के सारे रेलिंग के बाहर रहकर उनको सपोर्ट करेंगे, उत्साह बढ़ाएंगे और अपनी अपनी गाड़ियों को ट्रैक से दूर रखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी नीचे से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, तो ये जो अपना दादी प्रकाशमणि चौराया है उस तरफ से कोई भी गाड़ी का एंट्रेंस ओम शांति वन के तरफ से नहीं मिलेगा। अगर बाय चांस इमरजेंसी में किसी को आना भी हो तो पीछे के रास्ते से आ सकते हैं, पांडव भवन के पीछे के गेट से या ज्ञान विज्ञान भवन की तरफ से एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत सहयोग अपेक्षित है और बाबा के घर में ये सब बड़ा इवेंट बहुत अच्छी तरह से सफलतापूर्वक हम सब मिलकर संपन्न करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। आज हम सब बच्चों के लिए विशेष दिन है। आज का दिन हमें अपनी नई दुनिया की याद दिलाता है कि जब हम नई दुनिया में थे तो हम किस प्रकार से सदा हर्षित, सदा अनेक प्रकार के वरदानों से और अनेक प्रकार की अनुभूतियां करते थे। और अभी फिर बाबा हम बच्चों को फिर से वैसी नई दुनिया की स्थापना के लिए बच्चों को विशेष जिम्मेवारी दी हुई है। और बाबा भी हमको हर रोज याद दिलाते हैं कि आने वाली दुनिया हमारी कितनी सुंदर होगी, हमारे महल कैसे होंगे। आज भी बाबा ने बताया कि हमारे हीरे जवाहरातों के महल होंगे और हमारा वहाँ रहन सहन खान पीन और इतना सुखी और आनंदमय होगा। तो बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं कि उस दुनिया में बीच बीच में जाओ, वो अनुभव करो, क्योंकि वो अनादि संस्कार तो है ही है, लेकिन कभी कभी हम विस्मृति की ओर जाते हैं तो उस अनुभव को भूल जाते हैं। तो इसलिए आज हम सब प्यारे बाबा के पास जाएंगे, वतन में बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और भोग के साथ साथ बाबा जो हमें दृश्य दिखाएंगे, और हम चाहेंगे कि हम सब के सब अपनी नई दुनिया में पहुंच करके श्री कृष्ण के साथ मिलन मनाएं, बाबा के पास वहां पर अनुभव करेंगे और उसके बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। और सुनने के बाद आप देख रहे हैं कि राधे और कृष्ण, वैसे तो राधे कृष्ण इकट्ठे ही रहते हैं, अभी संगम के अंदर दोनों अलग अलग हैं, एक को अलग बिठाया एक को अलग बिठाया है। तो राधे कृष्ण के लिए आप ताली तो बजाओ। और भोग के संदेश के बाद राधे कृष्ण का सुंदर सा डांस भी होगा और आप सभी भी नई दुनिया के दृश्य देखते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर के आप भी डांस करेंगे, ताकि नई दुनिया का हम संगम युग पर तो अनुभव करते हैं और आज के दिन भी हम विशेष अनुभव करें। तो अभी हम चलते हैं वतन की ओर और वतन में भी कहां जाएंगे, बाबा के पास, और बाबा के पास साथ साथ नई दुनिया के भी अनुभव करेंगे। ओम शांति। Thank you.
सच्चा बाबा के सच्ची लगन से बन जा बाबा के
Bye.
शांति। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में सभी ब्राह्मण बच्चों की याद प्यार लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में तो पहले से ही बहुत सुंदर सजावट थी और बाबा का स्वरूप भी सुंदर सजा हुआ। कभी श्री कृष्ण का रूप दिखाई देता, कभी बाल स्वरूप दिखाई देता, कभी अलग अलग स्वरूप वतन में दिखाई दे रहे थे। और बाबा ने ऐसे हाथ किया, बोला कि आओ मेरे सभी फ्रेंड्स। और जैसे बाबा ने किया तो देखते ही देखते ढेर सारे बच्चे वतन में इमर्ज हो गए। और आज श्री कृष्ण का बीच का स्वरूप और उनके सभी साथी वहाँ वतन में सजे सजाए रूप में दिखाई दिए। कुछ सेकंड तक तो क्या देखती हूँ कि बहुत सुंदर रासलीला चल रही है, गोप और गोपियाँ रास कर रहे हैं श्री कृष्ण के साथ। एक तरफ देखती हूँ कि जमुना का किनारा है, दूसरी तरफ बहुत सुंदर बगीचे थे और तीसरे तरफ दूर से देखती हूँ कि सुंदर सुंदर महल थे। तो ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा था। तो बाबा का स्वरूप ऐसा था कि बाबा के द्वारा अलग अलग प्रकार की रंग की किरणें पहुंच रही थी, तो हर एक का श्रृंगार जो है वो बहुत सुंदर हो रहा था कि जैसे सब गोप और गोपियां उस मस्ती में रास कर रहे थे और बाबा भी श्री कृष्ण के रूप में उन्हें बहुत रास करा रहे थे, बहुत रास कर रहे थे और खुशी में झूम रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा का रूप कई प्रकार से देखती है। एक सेकंड में तो बाबा फरिश्ता दिखाई दे रहे हैं, एक सेकंड में बाबा श्री कृष्ण का रूप दिखाई दे रहा है, जैसे अलग अलग प्रकार के डायमेंशंस थे तो उन डायमेंशन से अलग अलग रूप दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने सब बच्चों को कहा, आज तो बच्चों का खुशियों का दिन है और बच्चे जितनी भी खुशियां मनाना चाहें मनाएं। तो सारे के सारे बच्चे सजे हुए खूब अच्छी तरह से नाचने लगे और बहुत अच्छी तरह से रास कर रहे थे। तो बाबा ने फिर ऐसे किया कि जैसे ऐसे हाथ किए तो बाबा के हाथ से एक पुष्पक विमान बनता है और सब बच्चे उसमें बैठ करके और दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। वहां जाते हैं तो इनका स्वरूप जो था वो ऐसे रूप में था, ईष्ट के रूप में, देवता के रूप में, और बाहर बहुत सारे भगत थे और वो भक्तों को साक्षात्कार करा रहे थे। तो बाबा ने कहा आज के दिन भगत श्री कृष्ण का रूप देखना चाहते हैं, चाहे कैसा भी साधारण रूप उनके सामने आए उसको देखते ही उनके अंदर इतनी खुशी होती है कि वो उस स्वरूप को देख करके अपने सब दुख की बातों को भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप ने बच्चों को विशेष वो स्वरूप दिया है जो सबके दुखों को दूर करने वाला और खुशी प्रदान करने वाला है। तो बाबा ने फिर कहा, अच्छा बच्चे अपनी नई दुनिया का अनुभव करो। तो जैसे नई दुनिया का अनुभव के लिए बाबा ने बोला, कोई तो महल में घुस गया, कोई तो गार्डन में खर्चा हुआ है, कोई पुष्पक विमान के पास है, कोई अलग अलग प्रकार के अनुभव कर रहे थे। बाबा ने कहा भविष्य दुनिया में तो जाएंगी, लेकिन अभी इस संगम युग के अंदर भविष्य दुनिया का अनुभव करके खुद भी खुशियों में झूमना है, औरों को भी वैसा झूमाना है। फिर बाबा ना जैसे सबको दृष्टि दे रहे थे, हर एक का रूप किसी का कृष्ण, हर एक के सामने श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण और राधे दोनों इस प्रकार से थे। बाबा कभी राधे कृष्ण के रूप में दिखाई दे रहे थे और बच्चे कभी राधे के रूप में दिखाई दे रहे थे, और वो दृश्य तो बहुत सुंदर। और ऊपर से आसमान से इंद्रधनुष के भी चारों तरफ लाइट निकलते हुए चारों ही तरफ एक बहुत सुंदर रंग बिरंगा वातावरण हो गया। तो बाबा ने कहा आज बाप ने बच्चों को वतन में बुलाया है, और वतन में बच्चों को बाप अपने साथ नई दुनिया के अनुभव करा रहे हैं। फिर जैसे बाबा के सामने भोग रखा तो बाबा ने देखते बोला कि बच्चे जो प्यास से बाप के लिए भोग बनाते हैं, इस भोग के अंदर वो ताकत और वो रस है जो भविष्य नई दुनिया के रस से भी और ज्यादा शक्ति देने वाला, अनुभव कराने वाला है। और बाबा ने फिर सबको अपने हाथ से भोग भी खिलाया, और भोग खिलाने के साथ बाबा ने कहा आज बाबा ने बच्चों को वतन में बुलाया है, तो बाबा बच्चों को कुछ देंगे क्योंकि आज का दिन ऐसा है। तो बाबा ने क्या किया, एक तो स्टार था, और उस स्टार के अंदर बाबा का संपन्न स्वरूप दिखाई दे रहा था, और दूसरा एक मुकुट था, और वो मुकुट राजाई तिलक तखत की तरह से जैसे राजाओं को पहनाया जाता वैसा था। तो बाबा ने कहा कि भविष्य दुनिया में जाना है तो अभी बच्चों को बाप समान अभी वैसा बनना है, तो बाप समान बनना है, और दूसरा अपने भविष्य स्वरूप के लिए बाबा जैसे बच्चों को राज तिलक राज सिंहासन अधिकारी देखते हैं, तो सदा हर बच्चा ये अनुभव करे कि मैं भविष्य दुनिया में भी राज सिंहासन धार के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा अभी फरिश्ता है, अभी देवता स्वरूप है, अभी सोमान आधारी है, अभी राज तिलक धारी बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा इस स्वरूप को सदा कायम रखना है, तो कायम रखने के लिए बाबा ने दो बातें कही। बाबा ने कहा एक तो इस संगम युग के अंदर बच्चों को निर्माण बनना है, जितना निर्माण बनेंगे उतना महान भी बनेंगे, और जितना निर्माण बनेंगे उतना दाता स्वरूप जो भगत देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, वह भी उनको अनुभव करा सकेंगे। फिर तो बाबा ने फिर से सब बच्चों को इमर्ज करते हुए उन सबको रास कराई, और सब गोप और गोपियों के रूप में रास कर रहे थे, और वो दृश्य तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा हर सेकंड खुशियों में नाचते और ऐसे बाप के साथ के अनुभव करते रहे, और राज तिलक अधिकारी बन कर रहे। फिर सबको याद दिया ओम शिव। सभी बैठे रहेंगे, दोनों बच्चे रास करेंगे, और आप सभी भी अपने स्थान पर रास करेंगे। टीचर मैंने भी रास कर सकती हैं। इनको रास करने भेजो ना, दोनों को भी।